मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 7 दिसंबर 2015 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, और इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की फरवरी 2016 में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं लोकेंद्र बहादुर यादव, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं, राजीव सिंह गर्ग, आप ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, और सतीश कुमार, आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो लोकेंद्र, राजीव और सतीश, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, इसी के क्रम में मैं अब 2 स्टूडेंट्स को अपनी ओर से, मैडम की ओर से, अपने एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, और सच मानिए तो अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने प्री एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। इसमें एक हैं अखिलेश कुमार, जिन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्री क्वालिफाई किया है, आप सासाराम बिहार से ही हैं, और दूसरे स्टूडेंट हैं अशोक गुर्जर, जो अजमेर राजस्थान से हैं और इन्होंने राजस्थान सिविल सर्विस का प्री क्वालिफाई किया है। तो अखिलेश और अशोक, आप दोनों को हम सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी कि आप सब मेंस भी क्वालिफाई करें, और ईश्वर से प्रार्थना भी कि वो आपको मेंस और इंटरव्यू तक क्वालिफाई करने की क्षमता प्रदान करें, और अंततः आप हम सबको ये सूचित करें कि आप जो चाहते थे वह आपने पा लिया है। फ्रेंड्स, मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि कल, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं रायपुर आया हुआ हूं और मैंने स्टूडेंट्स को टाइम दिया था कि जो भी स्टूडेंट मुझसे मिलना चाहते हैं, स्पेशली जो जिन्होंने फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच और थर्ड बैच में क्लासेस अटेंड की हैं, वो 3 बजे से 4 बजे तक आकर मुलाकात कर सकते हैं। और मुझे ये आप सबको बताते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है कि काफ़ी स्टूडेंट आए, हम लोग बैठे, और उससे भी बड़ी बात कि जो स्टूडेंट्स आए थे वे केवल रायपुर के ही या रायपुर के आसपास, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव हैं, यही के स्टूडेंट्स नहीं थे, बल्कि आने वालों में बिलासपुर के भी स्टूडेंट्स थे। और उससे भी बड़ी बात है कि बैकुंठपुर, जिसे हम कोरिया के नाम से भी जानते हैं, वहां से भी स्टूडेंट आए थे। और कोरिया से तो जो आने वाली थी वो 2 लड़कियां थीं, उसमें एक स्टूडेंट लड़के भी थे, और वो सब रात भर का ट्रेन से सफर करके रायपुर पहुंचे थे, और मिलने के बाद फिर से वो रायपुर से रात भर का सफर करते हुए अपने जगह पर पहुंचेंगे। तो मित्रों, इन सब के को मैं सच में एक तरीके से बधाई देना चाहूंगा, तारीफ करना चाहूंगा कि इनमें वो उत्साह और जुनून मुझे दिखाई दिया, और थोड़ी सी एक मुलाकात करने की इच्छा से वे यहां आए। और नो डाउट कि आने के बाद उन्हें भी अच्छा लगा ही होगा, मुझे यकीन है, और मुझे तो खैर बेहद अच्छा ही लगा कि जब फर्स्ट बैच, सेकेंड बैच, थर्ड बैच के जब आप स्टूडेंट से मिलते हैं तो वो पुराने दृश्य याद आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर मित्रों, उनसे बेहद खुशी हुई मिलकर। अब मैं लाइफ मैनेजमेंट वाले छोटे से पार्ट पर आता हूं। जितने भी स्टूडेंट आए थे उन्होंने अपनी कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की, उसमें तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दी और जिसको लेकर के मैं आज अपने लाइफ मैनेजमेंट वाले पार्ट में थोड़ी सी चर्चा भी करना चाहूँगा, और ये लगभग लगभग सभी स्टूडेंट्स के साथ ये बात थी, वो ये कि उन सब की समस्या एक थी कि सर, हम अपने इस जुनून को कैसे बनाए रख सकें। जब हम क्लास में आते हैं, 15 दिन अटेंड करते हैं तो खूब जोश रहता है और कुछ दिनों तक वो जोश चलता रहता है। जब हम डेली ऑडियो भी सुनते हैं तो एक बार जोश आ जाता है, कुछ दिनों तक चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होने लगता है और बाद में खत्म भी होने लगता है। तो हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम इस जुनून को बनाकर कैसे रख सकें। ये उनके साथ सबसे बड़ा संकट था, और भले ही ये प्रश्न 1-2 स्टूडेंट्स ने अपने अपने ढंग से किए, लेकिन मैं चेहरों को पढ़ने के बाद ये अंदाजा लगा सकता है कि लगभग लगभग ये समस्या सभी स्टूडेंट्स के साथ है। और मैं फ्रेंड्स ये भी जानता हूं कि ये समस्या सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ नहीं है जिन्होंने प्रश्न पूछे थे या मुझसे मिलने आए थे, बल्कि उन स्टूडेंट्स के साथ भी है जो मुझसे मिले नहीं हैं, जिन्होंने मुझसे प्रश्न भी नहीं किया है, जो इस ऑडियो को सुनते हैं, और ऐसे भी हैं जो नहीं सुनते हैं, और ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट ही नहीं है और कुछ कर रहे हैं इसके बावजूद इस समस्या का सामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मित्रों यह कि यह समस्या इनफैक्ट केवल सिविल सर्विस की या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वालों की ही समस्या नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो यह मानव मात्र की समस्या है, हर व्यक्ति की यह समस्या है। आप देखिए कि सच में इसको इस तरीके से सोच कर देखिए दोस्तों कि सच में ये प्रकृति कितनी उदार है, या ईश्वर सचमुच हमारा पिता है, जो भी आप नाम देना चाहें, जिसको भी संबोधित करके अपनी बात कहना चाहें, आप कह सकते हैं कि हम सब जो चाहते हैं वो हमको मिलता है। आप मैं जानता हूं कि मेरी इस बात पर सीधे सीधे यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में जो नकारात्मक घटनाएं घटती हैं वो सबसे ज्यादा प्रबल तरीके से मौजूद रहती है, या जो हमें नहीं मिलता है वो तो हमें याद रहता है, लेकिन जो मिलता है वो हमें याद ही नहीं रहता। आप लिस्ट बनाइए, प्लीज डू इट, करके देखिए, आप एक लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट में एक तरफ लिखिए कि जो जो आप चाहते थे वो आपको मिला कि नहीं, और दूसरी तरफ उसको बनाइए जो आप चाहते थे वो नहीं मिला। एक दिन की लिस्ट बनाइए ना कि आज मैं सुबह सुबह ये चाह रहा था तो उसमें से क्या क्या हो गया, और जो चाह रहा था सो उसमें क्या नहीं हुआ। आप पाएंगे कि ज्यादातर चीजें हुई हैं, यानी कि ज्यादातर तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, ज्यादा चीजों में हम सफल ही होते हैं, असफल तो कुछ मायनों में हम होते हैं। तो हम किन में सफल होते हैं और किन में असफल होते हैं? मित्र बहुत सिंपल सा फार्मूला है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं तो चाहने के लिए, उसको पाने के लिए फिर हम उसको कुछ करते हैं, तभी हमें वो मिल पाती है, और मिलने से पहले हमें करना पड़ता है, और करने से पहले हमें चाहना पड़ता है। तो चाहने का जो अंत है वो मिलने पर होता है, ज्यादातर हमारे साथ यही हो रहा है। तो मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि फिर आपको ये क्यों लगता है कि आपका जुनून कम हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो आपने हासिल किया है वो जुनून के कंटिन्यूटी के कारण ही हासिल किया है, अदरवाइज वो नहीं मिल पाता। जैसे फ्रेंड्स अगर मैं छोटी सी बात कहूं कि जितने भी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने कहा, रात रात का सफर करके वो यहां आए, अब आप बताइए कि वो कौन सी ताकत थी जो उन्हें यहां तक लेकर आई। आपको बहुत सिंपल सी बात लगेगी कि डेफिनेटली वो जो ताकत थी वो उनका जुनून था, मिलने का जुनून, बात करने का जुनून, पूछने का जुनून, अपनी समस्याओं के हल पाने का जुनून, जुनून तो था तभी वो यहां तक पहुंचे, अदरवाइज वो यहां तक बिल्कुल नहीं पहुंचते। और बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हम जाएंगे लेकिन वो नहीं आ पाए, उनमें जुनून में थोड़ी सी कमी रह गई होगी या उनको जरूरत नहीं होगी, पचासों कारण हो सकते हैं। मैं यहां जो बात कहना चाह रहा हूं मित्रों, प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए, और ये मैं केवल सिविल सर्विस वालों के लिए नहीं कह रहा हूं, हर के लिए कह रहा हूं। आप देखिए हमारे साथ होता क्या है, हम एक घर बनवाना चाहते हैं, हमारा घर बन जाता है, कुछ दिनों के बाद उस घर बनवाने का सारा उत्साह और सारा सुख गायब हो जाता है। हम एक नौकरी पाना चाहते हैं और उस नौकरी को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, हमें वो नौकरी मिल जाती है और कुछ समय के बाद वो नौकरी हमें बेकार लगने लगती है। शहर चुनते हम अपना रहने के लिए, कुछ समय के बाद वो शहर बेकार लगने लगता है। कितने उत्साह से आप बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, कुछ समय के बाद उस बाइक और कार के प्रति जो हमारा जुनून था, जो उसको पाने का जुनून था, वो कमजोर पड़ जाता है। हम किसी से शादी करना चाहते हैं, शादी भी हो जाती है, कुछ समय के बाद वो जुनून कम पड़ जाता है, खत्म पड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्या है? पहली बात दोस्तों, ये मानकर चलिए कि एक सतत प्रॉब्लम है, ये लगातार चलती रहेगी और ये सबके साथ होने वाली प्रॉब्लम है, सबके साथ होने वाली है और हर एक घटना के संदर्भ में घटने वाली है, आपके साथ ही कोई अलग से ये घटित नहीं हो रहा है। मित्रों ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दी है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हम अपने जुनून को अपने इमोशन से तो जोड़कर देख लेते हैं लेकिन अपने थॉट से, बुद्धि से, अपने विवेक से जोड़कर नहीं देख पाते। ये सबसे मुश्किल का काम होता है और इसीलिए जैसे इमोशन कम होते हैं वैसे ही जुनून भी कम होने लगता है। दैट्स ऑल। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न प्रिय श्रोताओं आप सभी से है, वो ये है कि क्या हम अपने आंगन में पेड़ रोप सकते हैं? मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ आपके आंगन में हो, या नीम का पेड़ हो, बरगद का पेड़ हो, आम का पेड़ हो, क्या आप रोप सकते हैं? क्या करेंगे उसके लिए? बहुत सरल सा उपाय है, बहुत ही सरल सा उपाय है, और वो ये है कि एक बीज उसका लाकर जमीन में मिट्टी के नीचे दबा देंगे और फिर उसको पानी वानी देते रहेंगे, धीरे 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 5-10 साल के बाद वो एक पेड़ में तब्दील हो जाएगा। यानी कि अगर आपको पेड़ को हासिल करना है तो उसकी शुरुआत बीज से करनी पड़ेगी, भले ही वो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है पेड़, लेकिन वह उस बीज में है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, जो चीज है, वह वस्तु होती है बीज, सीड। अब आप केवल ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो जुनून है, जो चाहत है इसको किसी भी चीज को पाने के लिए, वो आपके अंदर सीड के रूप में, बीज के रूप में मौजूद है या नहीं है। सभी के अंदर बीज के रूप में वो मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा कि स्टूडेंट रात रात भर का ट्रेन से सफर करके और मिलने के लिए यहां आए, तो मिलने का जुनून है, प्रश्न पूछने का जुनून है, बाइक खरीदने का जुनून है, उस पर्टिकुलर को पाने का जुनून है, तो सीड के रूप में तो वो मौजूद है, बीज वहां है। जब बीज है तो चिंता का कोई कारण हमारे पास नहीं रह जाता। अब आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और विवेक का इस्तेमाल क्या कहता है, अगर आप सुंदर से सुंदर, मजबूत से मजबूत बीजों को भी बहुत अच्छे रेशमी और मखमली थैली में रख करके और तिजोरी में बंद कर देंगे तो उन बीज कुछ नहीं कर सकते, ये अविवेकपूर्ण कार्य हुआ। विवेक क्या कहेगा? विवेक कहेगा कि उस बीज को उस रेशम की पोटली से निकालिए, वहां उसका कोई स्थान नहीं है, बीज वहां रेशम की पोटलियों में रखने के लिए नहीं होते, बीज तो जमीन के नीचे दबने के लिए होते हैं, वहां से निकालिए और उनको जमीन के नीचे दबाइए, और दबाने के बाद फिर उसमें समय समय पर पानी डालते रहिए, धीरे से एक हरी सी मुंडी धरती को फाड़ करके निकलेगी, फिर उसको प्रोटेक्ट कीजिए और लगातार उसको सूरज की तरफ बढ़ने दीजिए और पानी दीजिए और खाद दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, वो पेड़ बन जाएगा, ये विवेक है। इमोशन क्या कहेगा? नहीं नहीं, ये मुझे इससे बहुत प्रेम है, इसे मुझे संभाल करके रखना है, वहां तो पता नहीं वो नष्ट ना हो जाए, मैं इसे अपने से अलग नहीं कर सकता। तो ठीक है, अलग नहीं कर सकते तो बदले में वो बीज आपको कुछ दे भी नहीं सकता। लेकिन विवेक कहेगा कि नहीं, बीज का रोल दूसरा ही होता है, और वो उस पेड़ को पालेगा, क्योंकि वो विवेक उससे अकॉर्डिंगली कर्म कराएगा। दोस्तों, जुनून का जो मूल सिद्धांत है वो यही है, जब आप किसी चीज को पकड़कर, किसी चीज को फैसला करके चाहने लगते हैं, तो फिर आपको उस अपने चाहने को पोषित करना पड़ता है, अपने उस चाहने को आपको पालना पड़ता है, तब जाकर के कहीं वो चाहना सही मायने में आपके लिए, आपकी उपलब्धि में तब्दील होता है। मित्रों, जब आपने एक बार फैसला कर लिया तो फिर फैसला कर लिया, खत्म हो गई बात, मुझे इसके साथ जिंदगी बितानी है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में है, चाहे वो प्रोफेशन के रूप में है, चाहे वो शहर के रूप में है। डोंट अलाउ अदर थॉट्स टू डिस्टर्ब योर दिस ओरिजिनल थॉट्स। आप किसी भी दूसरे विचार को इस बात की इजाजत मत दीजिए कि वह आपके इस फैसले को डिस्टर्ब करे। कोई भी गली मत बनाइए, रास्ता मत निकालिए। अगर आप रास्ता निकालेंगे तो आपका ये जो ठोस विचार है उसमें से बह के चुपचाप बाहर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। डोंट अलाउ अदर टू इंटरफेयर अदर थॉट्स, बिल्कुल इंटरफेयर मत होने दीजिए। एक बार फैसला कर लिया है, विवेक के का आधार लेकर के उसमें पानी डालते रहिए, उस पर काम करते रहिए, आप पहुंच जाएंगे, आपका जुनून कम नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है फ्रेंड्स कि हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, कभी आशा होती है, कभी निराशा होती है, कभी अच्छा लगता है, कभी खराब लगता है, कभी छोड़ने का मन करता है, कभी जूझने का मन करता है, ऊब होती है, सारी चीजें होंगी, और इनको मान करके चलिए कि जैसे झील में आप उठने वाली हल्की हल्की लहरों को नहीं रोक सकते, झील तो डोलती ही रहेगी, जैसे कि हिंडोला हमेशा हिलता ही रहता है, ठीक उसी तरह से हमारा मन भी है, थोड़ी बहुत ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो ऐसी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं होती है। तो मित्रों, जुनून के बारे में जो स्टूडेंट्स ने प्रश्न पूछा था, मुझे ऐसा लगा कि ये प्रश्न शायद मेरे प्रिय श्रोताओं का भी प्रश्न हो सकता है, इसलिए मैंने आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए इस टॉपिक को चुना है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे इन बातों पर आप सब थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, इन पर विचार करेंगे, और विचार करने के बाद अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपने अपने विवेक के हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर। सामान्यतया आप जानते हैं कि अक्सर यही होता है कि सोमवार को हमारे पास न्यूज कुछ विशेष होती नहीं, सोमवार की सुबह डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जो रात में न्यूज आती है संडे की, सैटरडे संडे एक तरह से भारत सरकार काम नहीं करती है, कह लीजिए उस तरह से तो काम होते हैं, सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटती, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेकर के हम आफ्टर ऑल बात अभी तक तो करते ही आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं खासकर दो इश्यूज को लेकर के आप लोगों से थोड़ा सा एक लंबे तौर पर बातचीत करना चाहूंगा, और ये जो मैंने आज दो टॉपिक चुने हैं डेफिनेटली वो न्यूज से ही लिए हुए टॉपिक हैं, और इनकी थोड़ी सी बेसिक्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस बात पर प्रश्न करते हैं कि सर ये बेसिक्स क्या होता है, किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक्स क्या होते हैं। तो एक संयोग की बात है कि कल के न्यूज में दो ऐसे टॉपिक मिले जो हमारे सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट ही कहे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट मैं मान करके चलता हूं, और फिर ये भी है कि अगर आप इनके बेसिक्स को समझ लेते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे इसके ऊपर आप आगे के नॉलेज की इमारत खड़ी करते चले जाएंगे, और धीरे धीरे वो आप उस टॉपिक पर आपकी कमांड बनती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहली खबर थी वो आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान को लेकर थी। आप लोगों को मालूम है कि अभी पेरिस में जो विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी और जो अमेरिका जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब थे, उन दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ने हाथ मिलाया, बैठकर थोड़ी देर बातचीत भी की, और उस बातचीत वाला जो फोटोग्राफ्स था आपने देखा होगा कि वो मीडिया पे बहुत ज्यादा प्रसारित हुआ है, जिसमें नवाज शरीफ साहब सिर झुकाए हुए हमारे प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं और उस उनकी बातों को सुन रहे हैं। बेसिकली वो उस फोटोग्राफ्स की सबसे बड़ी विशेषता ये थी दोस्तों कि ऐसा नहीं लग रहा था कि दो प्रधानमंत्री और ऐसे प्रधानमंत्री जो जिनके देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं वो तन करके वहां बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि दो दोस्त एक बड़े दोस्ताना अंदाज में बैठे हुए कोई औपचारिक बातचीत कर रहे हो, इसलिए वो फोटोग्राफ बड़ा पॉपुलर हुआ। हालांकि कमेंट करने वालों ने बड़े एडवर्सली उस पर कमेंट भी किए, लेकिन वो एक मजाक की चीज होती है, एक चीजों को एक सामान्य तौर पर लेने की बात होती है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ था। वो संबंधों के सामान्यकरण की दिशा में जो दोनों के दिमाग में शायद बातचीत चल रही होगी उसका बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन उस फोटोग्राफ में मिल रहा था। तो दोस्तों, जो न्यूज में बात थी वो ये थी कि पेरिस सम्मेलन के बाद फिर से यह हुआ कि नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत शुरू होगी। आपको मालूम है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत लगभग एक बार फिर से बंद सी हो चुकी थी, बीच में कई बार ऐसा लग रहा था कि बातचीत शुरू होगी लेकिन वो बातचीत बंद हो गई थी। भारत की बहुत सामान्य सी बात है कि ये डिमांड है कि भाई आप हमारे यहाँ इस आतंकवादी गतिविधियों को कम कीजिए। भारत में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, आपने देखा है कि मुंबई का कांड हुआ, कुछ समय पहले वो पंजाब में, अभी कुछ महीनों पहले, 3-4 महीने पहले पंजाब में घटना घटी। तो इस तरह की जो घटनाएं घटती हैं ये है कि वो सब पाकिस्तान से होकर के आते हैं, तो पाकिस्तान ऐसे आतंकवादी घटनाओं को हमारे यहाँ बंद करे तब बातचीत शुरू होगी। पाकिस्तान की कुछ अपनी मांग होती है, उनके अपने रिक्वायरमेंट अपनी प्राथमिकताएं हैं कि भारत कश्मीर के मामले को सुलझाए, कश्मीर पर बातचीत करे, तो फिर वो पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच के मामलों को, कश्मीर के मामलों को सुरक्षा परिषद वहां जाकर के यूएनओ में उठा देता है, जबकि शिमला समझौते के तहत बिल्कुल साफ साफ दोनों देशों ने एग्री किया है कि उनके जो भी आपसी मामले होंगे उन मामलों को आपसी बातचीत के द्वारा ही सुलझाएंगे दोनों देश, इसमें कोई भी तीसरा देश इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, शामिल नहीं होगा। लेकिन उन बातों को भी हटा करके पाकिस्तान उसे यूएनओ में उठा देता है, जैसे अभी देखा जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यूएनओ गए थे, उसमें भी नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर का मामला वहां उठाया। तो इस तरीके से वो बातचीत की जहां थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनती थी वहीं वो बातचीत कुछ न कुछ ऐसा घटनाएं घटती थी कि वो मामला खत्म हो जाता था। लेकिन मित्रों, पेरिस के बाद जो एक बहुत अच्छी हुई है कि फिर से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, और अभी अभी दोनों देशों के जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनके बीच में बातचीत हुई, और कई मुद्दों पर बातचीत हुई और बड़े विस्तार के साथ बातचीत हुई है। तो दोस्तों ये बहुत एक अच्छा संकेत है, और सच पूछिए तो ये जो संकेत है ये दोनों ही देशों के लिए ही बेहतर है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए बेहतर है या सिर्फ भारत के लिए ही बेहतर है। भारत के लिए तो नो डाउट कि इसलिए ही बेहतर है कि कम से कम आतंकवाद से थोड़ी सी राहत की सांस भारत ले सकेगा। फिर आप देख रहे हैं किधर आईएसआईएस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये भी हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण कितनी बड़ी सेना खासकर नियंत्रण रेखा के आसपास दोनों देशों ने लगा रखी है, और उसका कितना अधिक खर्च दोनों देशों को उठाना पड़ता है, और खासकर कारगिल जैसे जब युद्ध होते हैं कितने लोग मारे जाते हैं। ऐसी घटनाओं के कारण आप देख रहे हैं कि मामला बढ़ते 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 कड़ुआहट कहां तक आ गई है कि हमारे यहाँ जो वहां के जो गायक हैं उन तक के प्रोग्राम्स नहीं होने दिए गए। जब वहां के एक राइटर की किताब का विमोचन हुआ तो मुंह पर काली पोत दी गई। तो मतलब यहां तक तनाव की स्थिति बढ़ रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जब क्रिकेट की बात चली तो उस पर फिर विवाद खड़ा हुआ कि नहीं होने दिया जाएगा। फिर दूसरे देश में होने के लिए जब तारीख निर्धारित की गई उस तारीख को लेकर के प्रश्न उठे। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि दोनों देशों के बीच में जो कड़वाहट है वो पब्लिक के स्तर पर किन किन रूपों में फिर वो बाहर आती है। तो डेफिनेटली इससे दोनों ही देशों को नुकसान हो रहा है, और एक ऐसे समय में जबकि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और खासकर आर्थिक क्षेत्रों में विकास के लिए लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरे देश भारत और पाकिस्तान जो किसी समय एक ही रहे हैं आज इतने बड़े एक तरह से एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं कि एक दूसरे के सच पूछे तो कहीं ना कहीं आर्थिक प्रगति को ही बाधित कर रहे हैं। इसमें एक चीज और भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि ऐसा लग रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान के संबंधों को ठीक करने के लिए पाकिस्तान पर भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दबाव बनने लगा है, जिसे आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव इस मायने में कि दुनिया के देशों को लग रहा है कि अगर इस एशिया महाद्वीप में और दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप में अगर शांति स्थापित करनी है तो डेफिनेटली इन दोनों देशों को अपने संबंध सुधारने चाहिए, और खासकर अगर विश्व आतंकवाद का मुकाबला करना है तो अगर ये दोनों ही आपस में लड़ते रहेंगे तो वो काम काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि दूसरी ओर भारत के भी जो संबंध है अब अमेरिका के साथ आप देख रहे हैं कि बेहतर हो रहे हैं, इंग्लैंड के साथ बेहतर हो रहे हैं, इधर यूरोपियन यूनियन देशों के साथ भी बेहतर हो रहे हैं, भारत के जो पड़ोसी अपने देश हैं उनके साथ भी भारत के संबंध काफी अच्छे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी पाकिस्तान पर एक मोरल प्रेशर या कह लीजिए एक अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा दबाव पाकिस्तान महसूस कर सकता है कि नहीं उसे चाहिए कि भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करे। आप जानते हैं कि सार्क देशों के बहुत से ऐसे प्रस्ताव जो सभी मेंबर्स कंट्रीज की आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उसमें पाकिस्तान अपने कुछ रोड़े अटका देता है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान लगातार एक दूसरे के काफी नजदीक आते जा रहे हैं, वो भारत के लिए एक अलग तरीके की चुनौती उससे पैदा हो रही है। और अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हो जाते हैं तो डेफिनेटली फिर इधर चाइना के साथ भी भारत को अपने संबंधों को एक संतुलित करने में काफी कुछ राहत मिलेगी। तो इसलिए मित्रों दोनों ही देशों के हित में है कि वो अपने संबंधों को सामान्य करें। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने जो आज उस दिन आपने न्यूज में सुनी है कि ये जो संबंध जो खराब हो रहे हैं सच पूछिए तो ये नागरिकों के स्तर पर उतने नहीं है, ये राजनीतिक स्तर पर ज्यादा है। और राजनीतिक स्तर पर क्या है मित्रों कि पाकिस्तान भी सच पूछिए तो संबंधों को बेहतर करना चाहता है। पाकिस्तान की जो राजनीति है डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल लीडर्स इस बात को समझते हैं, लेकिन ये बड़ा ऑब्वियस है स्पष्ट सा हो चुका है कि पाकिस्तान की राजनीति पर सेना का इतना जबरदस्त नियंत्रण है कि जैसे ही संबंध थोड़े से बेहतर होने को होते हैं सेना कुछ न कुछ ऐसे काम करती है जिससे कि संबंधों में फिर से कड़वाहट आ जाए। क्योंकि सेना नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बेहतर हों, उसे शायद ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आ गए तो फिर हमारी पोजीशन कमजोर पड़ जाएगी, हमारी वैसी जरूरत ही नहीं रह जाएगी, इसलिए भारत का हौवा दिखा दिखा करके वहां के लोगों पर अपना दबदबा कायम रखा जाए, ये वहां की सेना की सोच है। तो नतीजा ये होता है कि भले ही वहां एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है लेकिन सही मायने में इनडायरेक्ट में जो पकड़ है सत्ता पर राजनीति पर वो एक प्रकार से सेना की ही है, जिससे सच पूछे तो शायद पाकिस्तान के अपने जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी कठिनाई महसूस कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बातें जो मुझे शेयर करनी थी आपसे भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में, ये मैंने की है। जो दूसरी इम्पॉर्टेंट जो खबर थी दोस्तों वो थी संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में। न्यूज आपने सुना और थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि संगठित क्षेत्र वो होते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करें, जैसे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इस्पात कारखाना है, मारुति उद्योग है, या जो प्राइवेट जो इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी, तो उन क्षेत्रों को हम कहते हैं संगठित क्षेत्र। यानी कि वहां के जो मजदूर हैं उनके लिए बकायदे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, सुरक्षा के उनके उपाय भी हैं, उनकी एक सैलरी उनको दी जाती है, वो लोग थोड़े से एजुकेटेड भी हैं, स्किल्ड भी हैं, और उनकी अपनी यूनियन भी है जो मैनेजमेंट के साथ लगातार बात करती रहती है, तो ये संगठित क्षेत्र है। गैर संगठित क्षेत्र वो है दोस्तों जहां छोटे छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, जहां 5-10 मजदूर काम कर रहे हैं, या मध्यम दर्जे के उद्योग हैं जहां 50-100 मजदूर काम कर रहे हैं, तो वे असंगठित क्षेत्र है। यहां मजदूरों के अपने कोई यूनियन नहीं है, मजदूर यूनाइट नहीं है, जो भी मालिक चाहता है वो काम कराता है, ये बहुत स्किल्ड भी नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, तो ये असंगठित क्षेत्र कहलाता है जो फैले हुए हैं, जिनका कोई संगठन नहीं, ना तो उद्योगों का उस तरह से संगठन है बहुत बड़ा, और न मजदूरों के अपने संगठन है। भारत की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है फ्रेंड्स वो ये है कि हमारे यहाँ जितना भी लेबर फोर्स है उसमें से हार्डली 5%, कुछ तो 2-5% के बीच में आंकड़े आते हैं, संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बाकी सब असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो नतीजा ये होता है कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं इनके बारे में काफी दूसरी परेशानियां होती हैं, मतलब कह लीजिए कि एक्सप्लॉयटेशन के लेवल पर इनको काफी सामना करना पड़ता है। तो न तो इनके रोजगार की सुरक्षा होती, तीन शब्द आपने न्यूज में सुने हैं, रोजगार सुरक्षा सरकार मुहैया कराएगी, मजदूरी की सुरक्षा मुहैया कराएगी, और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराएगी। रोजगार की सुरक्षा क्या है कि ऐसा नहीं कि आप जब चाहें तब उनको निकाल दें, और अगर आप निकालेंगे भी तो उसकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये रोजगार की सुरक्षा हो गई। मजदूरी की सुरक्षा का मतलब है कि उनको एक मिनिमम वेजेज इतना तो मिलेगा ही, ये नहीं कि वो पूरी तरह से मालिक के मर्सी पर होंगे या ठेकेदारों की मर्सी पर होंगे, बल्कि आपको तो केवल इतनी ही मजदूरी मिलेगी, तो वो मजदूरी की सुरक्षा की बात थी। तीसरी थी सामाजिक सुरक्षा, एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर बीमार पड़ेंगे तो कैसे उनका इलाज होगा, बूढ़े हो जाएंगे तब उनकी देखरेख कैसे होगी, तो ये सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो सरकार ने कहा है कि हम ये तीनों सुरक्षाओं के बारे में हम सोचेंगे, और एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही और वो ये था दोस्तों कि जो श्रम कानून है, हमारे पास अभी 44 श्रम कानून है, और सरकार जल्दी ही एक ऐसे विधेयक लाएगी जिसमें उन 44 श्रम कानूनों की संख्या घट करके 4 रह जाएगी। आप देख रहे हैं कि लिबरलाइजेशन के बाद से, अभी से ही नहीं, लिबरलाइजेशन के बाद से लगातार ये मांग कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। जब रिफॉर्म की बात होती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात होती है, तो उसमें श्रम कानून भी प्राथमिकता में आता है कि आप अपने श्रम कानूनों को सुधारिए, क्योंकि श्रम कानून अभी ज्यादातर श्रमिकों के इतने अधिक हित में है कि इंडस्ट्री लगाने वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर आपको इंडस्ट्री बंद करनी है तो श्रमिकों को आप निकाल नहीं सकते, अगर निकालेंगे तो इतनी ज्यादा उनको कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है कि वो देना संभव नहीं हो पाता है। इसकी वजह से लोग डिमोरलाइज होते हैं भारत में, खासकर उद्योग लगाने के, तो श्रम कानूनों में सुधार किया जाए ताकि एक बीच की स्थिति बन सके, और नो डाउट कि जो श्रमिक संगठन है वो इन श्रम कानूनों के सुधार की बहुत पक्ष में नहीं है, वो इनके विरोध में है। उनको मालूम है कि अगर श्रम कानूनों में सुधार किया गया तो वो ज्यादातर, मतलब उनके हाथ से तो अधिकार चला जाएगा, जो अभी झुकाव उनके पक्ष में है डेफिनेटली उसका झुकाव कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट के पक्ष में हो जाएगा, जिसको लेकर के उनके मन में थोड़ा सा फियर भी है। राजस्थान ने इस बारे में अच्छी कोशिश शुरू की है और उसने अपने श्रमिक कानूनों की संख्या कुछ कम की है, मध्य प्रदेश ने भी थोड़े से घटाए हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं श्रम कानूनों में सुधार करने के मामले में राजस्थान अभी एक लीड लेकर के चल रहा है, एक लीडर का रोल निभा रहा है। और आप लोगों को मालूम होगा कि जो श्रम कानून है बहुत कुछ राज्यों के अपने अधिकार क्षेत्र में भी होते हैं, और देखते हैं कि केंद्र सरकार किस तरह से श्रमिक कानून लेकर के आती है। और डेफिनेटली ये टॉपिक सिविल सर्विस के लिहाज से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो दोस्तों ये था आज के न्यूज के बारे में। न्यूज में एक छोटी सी बात और आई थी जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो था खासकर मुल्ला पेरियार बांध के बारे में। खासकर तमिलनाडु में अब स्थिति संभल चुकी है, एक अच्छी खबर है। तो मुल्ला पेरियार बांध में काफी पानी आ गया है, छोड़ा जा रहा है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस राज्य में है मुल्ला पेरियार बांध। प्री के हिसाब से ये तमिलनाडु में है। और एक फिर छोटी सी खबर थी कि विश्व हॉकी लीग जो मैच हुआ है, जो रायपुर में ही फाइनल खेला गया, उसमें भारत को कांस्य पदक मिला है, और अंतिम मैच में बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन में भारत ने हॉलैंड को अंततः पराजित करके कांस्य पदक हासिल किया। तो मित्रों, ये थे आज के न्यूज के बारे में। जहां तक न्यूज़पेपर का संबंध है, आप समय की कमी के कारण उन पर चर्चा करने का वक्त नहीं रह गया है, तो आप नॉलेज सेंटर में चले जाएंगे, आपको सारी न्यूज क्लिपिंग्स वहां अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों, अब मैं अंतिम चरण पर आता हूं ईमेल पर। तो सबसे पहले तो किरण सिंह राजपूत जो रायपुर से हैं, उनको मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उन्होंने मेल लिखकर सूचित किया है कि उनकी माँ जो काफी गंभीर रूप से अस्वस्थ थीं, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। उसके लिए हम उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सबने ईश्वर से प्रार्थना की थी। तो किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके बारे में सूचना दी, और हम लोग फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लगातार स्वस्थ रहें और इसी तरह सक्रिय बन रहें। मित्रों, एक मेरे पास मेल है पवन कुमार का, सूरजगढ़ राजस्थान से। उन्होंने किताब के बारे में जानना चाहे, अच्छी हिंदी, सुंदर हिंदी। तो मैं उन्हें बता दूं, ये बेसिकली आप भाषा को अगर आप अपनी अच्छी करना चाहते हैं, एक बेहतर भाषा, उसके लिए ये किताब है। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के स्टूडेंट चाहे जिस मीडियम को भी ले, हिंदी ले, इंग्लिश ले या दूसरी रीजनल लैंग्वेज ले, उनकी अपनी भाषा पर कमांड होनी चाहिए। तो ये भाषा पर कमांड बनाने वाली किताब है। अगर आप ऑप्शनल हिंदी पेपर ले रहे हैं, हिंदी लिटरेचर ले रहे हैं, तो उसमें इस किताब से आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी सिलेबस के हिसाब से, लेकिन लिटरेचर चूंकि लैंग्वेज होती है तो उस रूप में ये किताब आपके लिए थोड़ी सी मदद कर सकती है। मित्रों, तीसरा मेल है विनय पाल का, जो गुड़गांव हरियाणा से है। विनय पाल, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सच पूछे तो आभार भी कि आप खासकर ये जो डेली ऑडियो होता है इसको लेकर के इतने सेंसिटिव हैं और लगातार इस बात की कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऑडियो को सुने। और वहां जो एक बहुत बड़ी कंपनी है, वहां इन्होंने उस ऑडियो को उनके हेड को सुनाया और फिर हेड ने उसे इतना पसंद किया कि फिर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए इसको एक तरीके से व्हाट्सएप पर भेज करके जो लाइफ मैनेजमेंट का पोर्शन है वो उन्होंने सुनवाना शुरू कर दिया। और विनय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पहले भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते रहे हैं। और मैं अपने सभी प्रिय स्टूडेंट से, चाहे वो मेरे क्लास के स्टूडेंट हों या मेरे प्रिय श्रोता ही क्यों ना हो, उनसे कहूंगा कि अगर सच में आप लोगों को लगता है कि ये बहुत अच्छा है, आप लोगों को इससे फायदा होता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए, सूचना दे दे करके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। इससे मुझे बेहद खुशी होगी और सच पूछे तो एकेडमी फॉर एक्सीलेंस आत्मसंतोष का भी अनुभव कर सकेगी। मित्रों, बहुत से मेल हैं, अब मैं उन सबको आभार उनके प्रति व्यक्त करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: अब्दुल्ला कुरैशी जोधपुर से, जगमोहन चौधरी विशाखापट्टनम से, यशवंत सिंह, अजय दीप यादव गाजियाबाद से, सुगम अग्रवाल, भवानी राणा इंदौर से, अमन तिवारी जयपुर से, अभिनव यादव बाराबंकी से, मोहित कुमार वर्मा दिल्ली से, सुरेंद्र प्रताप इलाहाबाद से, मनीष पांडे जौनपुर से, स्नेहाशीष चौधरी एपी पांडे लखनऊ से, जयवीर सिंह ऋषिकेश से, अंकित राज बेगूसराय से, लव कुमार इंदौर से और प्रियंका रावत गाजियाबाद से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं अब आज के इस ऑडियो को यहीं विराम देना चाहूंगा। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।